بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى اب فاسٹ فارورڈ ہے اب ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے باتیں نہیں کہیں کہ جو آپ کو، یعنی پھر اس کے بعد یہ ہوا، کوئی کہانی آپ کو نہیں سنائی جا رہی، بلکہ آپ کو جو چیزیں آپ کے لیے زندگی کے اندر سبق دینے والی ہیں ان کو مینشن کیا جاتا ہے. یا خزل کتاب، اے یحییٰ خزل کتاب، لے لو کتاب، بے قوت، انسات قوت کے، مضبوطی کے ساتھ. مضبوطی کے ساتھ کتاب کو لینا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ مضبوطی سے اس کو پکڑ لے بس، نہیں، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا، اس کو یاد کرنا، اس پہ عمل کرنا. اس لیے آتا ہے کہ انہوں نے کتاب کی جو 3 سال کی عمر میں کتاب کو، کتاب سے مطلب ہے تورات، کیونکہ اس وقت تو تورات ہی تھی نا، وہ پوری پڑھ لی تھی، اور 7 سال کی عمر میں تورات کے ماہر ہو گئے تھے. اور کھیلتے کودتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ویسا اللہ نے کسی سے پہلے نہیں کسی کو بنایا. بچے ان کو کہتے تھے آگے کھیلیں، تو کہتے تھے زندگی اس کے لیے نہیں ملی کہ کھیلیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی نا وہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہی ان کے اوپر عنایت تھی. اور آپ کو دیکھتے ہیں کہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ ہیں، یہ تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ان کے اندر یہ ہوتا ہے، اور ماں باپ کی محنتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں، والد کی دعا بھی اس میں شامل ہے. تو جب انسان اپنی اولاد کے لیے اس طرح سے دعائیں کرنے والا ہو، اور اس طرح سے ان کے لیے ایک مشن پہلے سے ذہن کے اندر ہے کہ کیا انہوں نے کرنا ہے، کہ یاری سنی و یاری سوال یا اوب، کہ پہلے سے ہی ان کو پتا ہے کہ کیا چیز کی طرف ان کو لے کر جانا، تو پھر ایسے ہی بچے ہوتے ہیں. تو 7 سال کی عمر میں تورات کے ماہر ہونا کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی امپاسبل بات ہو. اور تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بھی خبر تھی، تو یحییٰ علیہ السلام نے ان کا مددگار بننا تھا، ان کی تصدیق کرنی تھی، ان پہ ایمان لانا تھا، ان کا ساتھی بننا تھا، ان کا بازو بننا تھا. تو یہ بھی تھے. تو قوت کے ساتھ، اچھا دیکھیں آپ کے، ہمیں بھی تو ہماری کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑنے کی تلقین کی گئی ہے. جیسے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ آپ اپنی کتاب کو قوت سے پکڑے، تو ہمیں بھی یہ کہا گیا. اور قوت سے پکڑنا، پھر ہم کیا، ہم قرآن کو قوت سے پکڑ رہے ہیں؟ دیکھیں رمضان کے رمضان قرآن پڑھ لینا یا اس کو ختم کر لینا، کیا قوت سے پکڑنا؟ آپ کا قرآن کتنی دیر میں ختم ہوتا ہے؟ رمضان میں نہیں، رمضان کا نہیں پوچھ رہے، اس کے علاوہ بتائیے کتنی دیر میں آپ قرآن ختم کرتے ہیں؟ ہوتا بھی ہے پورے سال میں ختم یا نہیں؟ یا صرف رمضان کے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے اٹھا کے، کہ اس وقت ہی پڑھنا ہے، اس وقت ہی ہم نے بس اس کی تلاوت کرنی ہے. اور پھر صرف پڑھنا نہیں ہے، ظاہر ہی بات ہے سمجھنا بھی ہوگا، تو تبھی قوت سے پکڑنا ہوگا نا، اور پھر اس کو عمل میں لانا، امپلیمنٹ کرنا اس کو، یہ تب ہوگا قوت سے پکڑنا. صرف پکڑنا نہیں ہے، قوت کے ساتھ، یعنی بالکل سختی سے اس پہ کاربند ہو جائیں، یہ ہوگا پھر قوت سے پکڑنا. تو ہم تو پھر یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم رمضان کے لیے قرآن نازل ہوا ہے تو اس میں بس ہم نے اٹھانا ہے، زیادہ سے زیادہ کلاس لے لی بس، اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے. یا میں نے بچوں کے لیے یہ رکھا ہوا ہے کہ صرف ایک بار زندگی میں پڑھنے کے لیے قاری صاحب لگا دیا، وہ انہوں نے پڑھ لیا، ان کا ناظرہ ختم ہو گیا، آمین کی پارٹی کر دی، یہ بس ہمارا فرض ادا ہو گیا. پارٹی کریں لیکن ساری زندگی اس کو پڑھنا ہے، صرف ایک دفعہ نہیں پڑھنا، تبھی مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. اب تو یہ ہونا چاہیے کہ پھر، یعنی یہ ایک سلسلہ شروعات تھی، یہ تو آمین ایک شروعات ہے کہ اب ساری زندگی میں اس کو پڑھتی رہوں گی، اور اس کے بعد اس کو سمجھوں گی بھی، اس پہ فوکس کروں گی، اس کے اوپر تدبر کروں گی. جبکہ سمجھنا تو ڈکشنری میں ہوتا ہی نہیں، کہ پیرنٹس کی یہ بھی کبھی خواہش ہو کہ ہم نے یہ بچوں کو سمجھانا بھی ہے کہ کوئی اس کو، ان کو پتہ ہونا چاہیے قرآن میں کیا لکھا ہے. یہ کتنے پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے، یا کتنے پیرنٹس اس چیز کے لیے بھی محنت کرتے ہیں؟ عمل کرنا تو پھر دور کی بات رہ جاتی ہے نا. یا اس کا ایک حصہ پڑھ لیا، یعنی صرف وہ 5 سورہ لے کے اس کو ہی پڑھتے گئے پڑھتے گئے، اور بس یہ مضبوطی سے پکڑنا ہے کتاب کو. किताब तो पूरी की पूरी किताब है ना, सिर्फ बंसूरा तो किताब नहीं है, और बंसूरे वाली सूरतें भी नहीं समझ होती कि वो उसमें क्या लिखा है। वातैनाहुल सबिया, और हमने उसको हिकमत, हुक्म का मतलब ना, बहुत सारी चीजें इसके बहुत सारे माने किए हैं उलमा ने। हुक्म से मुराद हिकमत भी है, जिसको विजडम कहती है, इल्म भी है यानी तौरात का इल्म, और इस इल्म पर अमल करना भी है, नबुवत भी है, अकल भी है, ये सब चीजें यानी समझ बूझ जिसको कहते हैं वो भी है, ये सब चीजें हुक्म में आते हैं। तो जब छोटे बच्चे ही थे ना, तब से अल्लाह ताला ने दी, आ तई ना हमने दी, देख ले अब हमने दी उसको, इसका मतलब हमें अपने बच्चों के लिए ये चीज मांगनी है तो अल्लाह से ही मांगनी है, अल्लाह ही देता है। हम सोचे कि हम अपने बच्चों को ये कर सकते हैं, तो हम नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ही देने वाला। ठीक है, तो सभी छोटे बच्चे को कहते हैं, तो अभी जिसकी इमेच्योरिटी नहीं, मिच्योर नहीं हुआ अभी, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त ही उनको इतनी मिच्योरिटी दे दी। तो हमें इससे बहुत बातें समझ आती हैं कि बचपन में ही उनको ये सारी चीजें मिल गई थी, हम तो बड़े होते तक भी हमें नहीं समझ होती, नहीं इल्म होता, नहीं हिकमत हमारे अंदर आती। तो यूतिल हिकमत मैं शाह मैं यूतिल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा, अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसको अल्लाह हिकमत दे दे ना, उसको अल्लाह ने बड़ी ही खैर दे दी। तो इल्म अलग चीज होती, हिकमत अलग चीज होती, हिकमत भी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से, जिसको चाहे हिकमत अता फरमाए। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा इरादा करें कि कोई दिन ऐसा ना हो मेरी जिंदगी में कि मैं जिस दिन कुरान ना उठाऊं, कोई दिन ना ऐसा हो। अच्छा वहाना देखिए, अब इनकी कितनी इतनी प्यारी अल्लाह ताला ने इनको दौलतें अता फरमाई, ये दौलत है ये, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला देखें आप, पैगंबरों के लिए ये नहीं कुरान में फरमाता अल्लाह ताला ने उनको इतना पैसा दे दिया, इतना माल दे दिया, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला उनकी कितनी प्यारी दूसरी खूबियां हैं जो अल्लाह के हाँ बड़ी चीज है वो अता फरमाता है। वह हनानन, और हनान बनाया उनको अल्लाह ताला फरमाते हैं, मिल्ला दुन्ना अपनी तरफ से हनान बनाया। हनान का मतलब क्या होता है, शफकत करने वाला, मोहब्बत करने वाला, नरमी करने वाला, आ, आ, जिसको कहेंगे केयरिंग, रहमदिल। और हनान बहुत प्यारा नाम भी है, किसी लड़के का हो सकता है, हनीन लड़की का हो सकता है, उसमें ये जिसमें ये सारी खूबियां हो, लड़कों में कम ही होता है ऐसे कि कोई हनान हो, तो यानी जिसके अंदर रहम हो, हमदर्दी हो। और हनानन है ना तनवीन है, तो तनवीन से मतलब ये होता है इसके अंदर भी एक एग्जेजुरेशन आ जाती है कि हाई लेवल का हनान, इसमें ये खूबी बहुत ज्यादा थी। और अपने लिए अपने अंदर ये खूबी थी, लोगों के लिए भी और अपने वालदेन के लिए भी, और वालदेन के दिल में भी इनके लिए थी, और ये भी मतलब है अल्लाह की तरफ से भी इनके लिए मोहब्बत थी, शफकत थी, केयर थी, रहम था, और इनके अपने दिल में भी था, टू वेज हो गया। वह जक्यातन, और जक्यात, जक्यात का मतलब क्या, पाकीजगी, इंटरनल पाकीजगी, बातनी जो पाकीजगी होती है ना उसको जक्यात कहते हैं, जैसे कहते हैं ना तस्किया नफ्स, तस्किया अंदर की होती है, तो अंदर से भी प्योर थे, गुनाहों से पाक थे, दिल साफ था, तकिया तकवा वाले थे, सुभान अल्लाह। वह कहना तकिया मतलब कहना में ना इस्तमरार आता, कंटिन्यूटी, यानी सारी जिंदगी वो ऐसे थे, ये नहीं कि रमजान या जिलहज के दिनों में बड़े नेक बन गए, फिर उसके बाद वो भी हिजाब भी उतार देती है, नमाजें भी पूरी नहीं होती, कुरान तो वैसे ही नहीं पढ़ना, अब अगले रमजान का इंतजार है, तो ऐसे नहीं थे सारा वक्त। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला को वो काम पसंद होते हैं जो कंटिन्यूटी के साथ होते हैं, तसलसल के साथ होते हैं, आप उसको अपनी रूटीन में लेकर आ जाते हैं, ऐसे नहीं कि कभी किया कभी फिर बिल्कुल ही छोड़ दिया, फिर कभी याद आ गया तो कर लिया, नहीं। ठीक है, इसलिए आपको कहा जाता है कि जो आप कुरान सीख रहे हैं ना, इसमें भी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, अगर आप हर जुमे को बैठते हैं तो हर जुमे को बैठे और आप उस चीज को अपना बनाएं कि मैंने क्लास लेनी है, ऐसे नहीं कभी किया कभी नहीं किया, कभी छोड़ दिया कभी याद है, ये काम पसंदीदा नहीं होते। ठीक है, आप देखिए आप ऑफिस में जाएं, कभी किसी दिन गए, जॉब पे किसी दिन नहीं गए, क्या होगा? क्या आपको वो पे देते हैं? नहीं, आप इस तरह तो छुट्टियां नहीं कर सकते कि मेरा दिल कर रहा था तो मैं आ गई, दिल नहीं करता तो नहीं आई, आज बच्चों की छुट्टी है तो मैंने भी छुट्टी कर ली, ऐसे नहीं आप करते। आपको पता होता है कि आपने जो कमिटमेंट की है मैंने पूरी करनी है, लेकिन क्या बात है कि दीन के कामों में हम हर वक्त में कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहते हैं, आज थक गई, आज रात को नींद नहीं सही आई, आज बच्चों की छुट्टी हो गई, आज वेकेशन पे चले गए, आज घर में शादी हो गई, आज दावत है, आज फलां है, हर वक्त हमारे कोई ना कोई चीज तो चलती, ये तो चलती ही रहेगी, ये तो रूटीन है जिंदगी की। वो देखें क्या ना तकिया, वो थे ही मुत्तकी, सारा वक्त ही सारी जिंदगी ऐसे रहे, और तकिया में भी एग्जेजुरेशन है, बहुत ज्यादा मुत्तकी, और मुत्तकी वो होता है जो अल्लाह से डर डर के जिंदगी गुजारने वाला, हर वक्त कॉन्शियस रहता हो, हर वक्त केयरफुल रहता हो, ऐसा नहीं कि शादियों में दीन सारा एक तरफ, जब किसी के दावत में जाए तो तब दीन भूल गया, जब छुट्टियां गुजारनी हो तो तब दीन ही याद नहीं है कि हमने कुछ पढ़ा भी था कि नहीं, हमेशा ही उनको कोई हालात नहीं करते, जब अपने फ्रेंड्स के अंदर हो तो तब भी सारा कुछ याद ही भूल जाता है कि भाई हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल भी नहीं याद रहते, आपे से बाहर होने लगते हैं। नहीं, वो तकिया वो है जो हमेशा केयरफुल रहे कि मेरे किसी बात से, किसी काम से, किसी किसी स्पीच से, मेरी कहीं कॉल या फेल में कहीं कोई ऐसी बात ना आ जाए जिससे अल्लाह ताला नाराज होता हो, मेरे से कोई नेकी ऐसी ना रह जाए जो अल्लाह को राजी करने वाली हो। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली इसमें थे। अल्लाह अकबर, वो बर्रम भी वालिदही और नेकोकार अपने वालदैन के साथ। अब यही खूबियां आगे ईसा अलैहिस्सलाम की भी आएंगी, तो हम यहाँ पे जब देख लेंगे तो आपको वहां पे भी उसी चीज को आप समझ लीजिएगा। देखिए वालदैन, इनके वालदैन कैसे हैं बताएं, क्या जहन में आता है आपको कि एक बेबी हुआ है उसके वालदैन कैसे हैं, इतने बूढ़े, बुढ़ापे की हद को पहुंच गए, जैसे कहते हैं ना बुढ़ापे की औलाद, जब बुढ़ापे की औलाद होती है तो इंसान को उसको पालना भी मुश्किल होता है, परवरिश करना, उसको तालीम देना भी कितना मुश्किल। देखें जब खुद जिनकी हड्डियां इतनी कमजोर हो चुकी हैं, वो खुद ऐसे लागर हो चुके हैं, उनके लिए आपका मतलब है औलाद की परवरिश करना आसान होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको ऐसी खूबसूरत सिफात दे दी थी ना, सुभान अल्लाह, कि ये भी अल्लाह की तरफ से ही है कि वो अपनी माँ बाप के लिए इतनी नेकी करने वाला, वरना माँ बाप तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते ऐसे बच्चे को। अच्छे भले जवान माँ बाप के लिए कंट्रोल करना मुश्किल है, तो जो इतने बूढ़े हो तो बच्चे तो उनको कुछ समझे ही ना, तो लेकिन सुभान अल्लाह जो बाप ने दुआ की थी ना कि अल्लाह मेरा भी वारिस और आले याकूब का भी तो, और जो राजी करने वाला हो तुझे, तो फिर वो औलाद थी कि जो वाकई इतनी खूबी रखने वाली थी कि सुभान अल्लाह अपने वालदेन के साथ भी बर वाला, नेकी करने वाला, और बर के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, बरम भी वालिदही मतलब तकवा भी, ईमान भी, सबर, शुक्र की सारी खसूसियात हैं, तो तकवे का भी आप समझ ले हाई लेवल, सुभान अल्लाह। और आपको पता है अल्लाह ताला के बाद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इंसानों के अंदर अगर किसी का हक हमारे पर सबसे ज्यादा है तो वो हमारे वालदैन का है, और उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा इंसान को मुश्किल हो जाती है कि वो उनके साथ अच्छाई करे, क्योंकि एक तो वालदैन के साथ इंसान फ्रैंक बहुत होता है, दूसरे वालदैन को वो जाहिर है कुछ वो कुछ कह भी देते हैं तो वो उनके साथ कुछ आगे से बोल देता है, कुछ आगे कोई बदतमीजी कर देता है, ऊंचा बोल लेता है, और हम कितना ज्यादा हकूक वालदेन के पढ़ चुके हैं कि उनके लिए उफ भी ना किया जाए, लेकिन हम इस दौर से गुजर रहे हैं जिसमें कयामत की निशानियां पूरी हो रही हैं, और एक बहुत बड़ी निशानी कयामत की ये है कि लौंडी अपने मालिक को जन्म देगी, यानी वो जो बेटा पैदा किया है ना वो उसका बेटा नहीं है, वो तो अपने मालिक को उसने जन्म दे दिया, कि वो आज कहते हैं वालदेन के अब तुम हमारे वालदेन हो तो हम तुम्हारे बच्चे हैं, ऐसे ही लगता है। आज वालदेन बच्चों को देख के चलते हैं कि इनके मूड ना खराब हो जाएं, ये हमसे नाराज ना हो जाएं, ये हमसे मुंह ना मोड़ लें, तो उनके पीछे 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 ऐसे फिरते हैं जैसे कि उनको फिरना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए। वालदेन सोचते हैं कि हमसे कहीं नाफरमानी ना हो जाए औलाद की। ये वाकई ऐसा है? कोई ऐसी चीज जो ये हुक्म दे दे तो ये ना हो जाए कि हम पूरा ना कर सके? अल्लाह अकबर। लेकिन वो अपने वालदेन के साथ हुस्ने सलूक करने वाले थे, और आपको पता है वालदेन की रजा में अल्लाह की रजा है और उनकी नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। अल्लाह अकबर। वलम यकुन जब्बारन, और ना था वो जबर करने वाला। जबर करने वाला मतलब, यानी जबर होता है ना प्रेशर डालना, तो ऐसा नहीं था कि वो पुशी हो या बॉसी हो और ऐसी, और नाफरमान नहीं था। यानी ये नेगेटिव सिफात है, उनमें कोई ऐसी नेगेटिव सिफत थी नहीं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपने साथियों के लिए कितने मेहरबान थे। और यहया अलैहिस्सलाम भी देखें कैसे ना जब्बार थे ना असिया थे, सुभान अल्लाह, किसी के लिए भी नहीं थे। और आज मुसलमानों के अंदर इस तरह की चीजें रही ही नहीं है। मुसलमानों के अंदर ऐसा ऐसे अखलाक, बल्कि मैं जो समझती हूँ कि हमने इन लोगों से वही चीजें सीख ली, जैसे ये लोग अपने वालदेन का मजाक उड़ाते हैं, ये लोग अपने वालदेन को कुछ समझते नहीं, इतने उनके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह आज हमने भी सीख ली यही चीजें कि वालदेन तो कोई चीज ही नहीं है। और जैसे जैसे आप पिछले दौर में जाते जाएंगे, आप देखेंगे कि वालदेन की इज्जत होती थी, अब जैसे आगे दौर बढ़ता जा रहा है उतना ही ज्यादा वालदेन को डिग्रेड किया जाता है, उनको कुछ समझा नहीं जाता। और जब्बार की जो सिफत है ना, अल्लाह ताला के लिए तो पॉजिटिव में है, क्योंकि वो जब अल्लाह ताला को अल जब्बार कहा जाता है, उसके अस्माए हुस्ना में से एक अल जब्बार, तो यानी प्रेशर डालने वाला, यानी जो हड्डी को प्रेशर डाल के सीधा कर दे तो वो हमें सही कर देता है प्रेशर डाल के। लेकिन इंसानों के लिए जबर अच्छी चीज नहीं, कहते ना जबर किया उसने, उसको प्रेशराइज करा, तो वो ऐसे नहीं थे। अल्लाह ताला के नजदीक ऐसा इंसान ही अच्छा है। वो हदीस में आता है ना कि जिसके ऊपर जहन्नुम हराम और जो जहन्नुम पे हराम है वो कौन है? वो हय्यिनुन लय्यिनुन करीबुन, जो सहलुन, जो इजीली एक्सेसिबल हो, इजी गोइंग हो, नरम हो, लय्यिन हो, और ये सारी उसकी सिफात बताई गई जो जहन्नुम के ऊपर हराम और जहन्नुम उसके ऊपर हराम। तो हम इनमें देखें कि हमारे अंदर कितनी सिफात है, क्या हम भी इजी गोइंग हैं लोगों के साथ? बाज लोगों के साथ मामला करना इतना मुश्किल होता है कि वो जब उनके साथ मामला करें तो टेढ़ी ही बात करते हैं, इजी नहीं है, इजी गोइंग नहीं है। प्लीज इजी गोइंग हो लोगों के लिए, चाहे आप एक GPL हैं, एक स्टूडेंट हैं, एक बेटी हैं, एक बीवी हैं, इजी गोइंग बने और लयन बने, नरम बने, इनकी सिफात में आता है। हम कहते हैं नहीं, मुझे सख्त होना है तो ताकि कोई मेरे से फायदा ना उठा ले। कोई नहीं आपसे फायदा, देखिए वो हन्नान थे, सुभान अल्लाह, नरमी। हमारे बारे में लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है, कभी जानने की कोशिश तो कीजिए कि क्या वो हमें लयन देखते हैं कि ये नरम है, जेंटल है, सॉफ्ट स्पोकन है, सॉफ्ट हार्टेड है, इजी है, इजीली एक्सेसिबल है। तो वो ऐसे बच्चे थे, सुभान अल्लाह, आसिया भी नहीं थे, नाफरमान भी नहीं थे, नहीं, इतने सुकून देने वाले बच्चे थे। तो ये तो खास अल्लाह ताला की रहमत है किसी वालदेन के लिए। अल्लाह ताला ने बच्चा दिया, लेकिन देखे देर से आया, लेकिन कितना प्यारा बच्चा दे दिया। और हम पिछली सूरत में पढ़ चुके हैं कि एक खैर में भी अगर डिले होता है ना, तो उसमें भी अल्लाह ताला की कोई हिकमत होती है, उसके पीछे भी कोई ऐसी चीज होती है जो हमारे लिए खैर होती है। अल्लाह ताला को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हमारे लिए उसमें खैर होती है। अस्सलामु अलैहि यौम वुलिद व यौम यमूतु यौम युबअथु हय्या, और सलाम हो उसके ऊपर, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने सलाम भेजा उनके ऊपर जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन उनको मौत आई, और जिस दिन वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। और उलमा कहते हैं ये तीन औकात जो है ना इंसान की जिंदगी के सबसे मुश्किल होते हैं। जो पैदाइश का वक्त होता है ना, वो भी मां के पेट से देखिए कि इंसान कुछ भी नहीं था, पैदा हुआ तो वो एकदम डिफरेंट वर्ल्ड में आ गया जिससे उसका कभी सामना नहीं हुआ था। कभी उसने इंसान नहीं देखे, कभी उसने बाहर सांस नहीं लिया, कभी उसको पता ही नहीं दुनिया है क्या, ठीक है, तो वो इसमें आया। लेकिन खैर वो एक होश का जमाना नहीं होता, मगर इंसान के लिए एक नई चीज होती है। दूसरा जो होश का जमाना बाकी जो दो है ना वो होंगे जिस दिन वो दुनिया से जाता है ना, वो भी बड़ा ही मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि जो मौत की सख्तियां, उसके लिए भी दुआ करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला गमरातिल मौत व सकरातिल मौत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने लिए ये दुआ मांगा करते थे। तो वो वक्त भी बड़ा ही सख्त है, बड़ा मुश्किल वक्त है। अल्लाह ताला ने सलाम भेजा है, एक तो मतलब वैसे सलाम भेजना है ना जैसे हम सलाम भेजते हैं किसी के ऊपर ग्रीटिंग के तौर पे, और एक है सलामती है उनके लिए, अमन और सलामती जिसको हम कहते हैं, उनके लिए सलामती का पैगाम है जिस दिन पैदा हुए, जिस दिन उनको मौत, और वो तो शहीद हुए थे। और यौम युबअथु हय्या, जिस दिन वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। आप सोचें जब मौत भी आती है तो इस दुनिया से एक ऐसे जहान के अंदर जाना है जो ना कभी देखा ना कभी सुना, सुना तो खैर है लेकिन ना कभी देखा ना कुछ उसका एहसास है ना उसको कोई पता है कि वो यानी हम सुनते भी जो है ना ऑब्वियसली हमारी इमेजिनेशन में वो चीजें उस तरह नहीं आ सकती। जब हमें मुनकर नकीर का बताया जाता है तो हम नहीं इमेजिन कर सकते उन फरिश्तों को, हालांकि बताया जाता है उनकी आंखें ऐसी होंगी, वो ऐसे जमीन को कुरेते हुए आएंगे, वो ऐसे होगा, कब्र में ऐसा होगा, बिठाया जाएगा, ये सवाल की, लेकिन हम उसको उस तरह से नहीं इमेजिन कर सकते जैसे उस वक्त कैफियत होगी। हम मौत को नहीं जान सकते जब तक उससे गुजरेंगे नहीं, हम अगले जहान की बातों को समझ ही नहीं सकते, कयामत के दिन को हम नहीं उस तरह से विजुअलाइज कर सकते, ठीक है, एक एक इमेजिन कर सकते हैं लेकिन इमेजिनेशन भी हमारी लिमिटेड है, ठीक है। तो जिस दिन इंसान उठाया भी जाएगा ना जिंदा करके, तो वो तो मैदाने हशर होगा उसका, तो हम सोचें कि वो कितना मुश्किल वक्त होगा, उस दिन भी अल्लाह की तरफ से इनके लिए सलामती है। देखें जिसको मौत के बाद सलामती मिल जाए और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, अमन और सलामती जिसको हासिल हो जाए कि अल्लाह ताला ने उनको उस वक्त ही सलामती दे दी कि इन तीनों औकात में इनके लिए सलामती है। और देखिए आप अब हम तो भूल चुके, जो भी हम जिस दिन पैदा हुए उस दिन का तो हमें याद भी नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन मरने का और दोबारा उठने का ये बिल्कुल होशो हवास के टाइम्स होंगे और बहुत मुश्किल टाइम्स है, इसलिए उनका जिक्र किया गया। कोई भी और अगर मुश्किल वक्त होता ना जिंदगी का, हालांकि बड़े मुश्किल हालात यहाँ अलैहिस्सलाम ने देखे थे और उनको शहीद कर दिया गया, सोचे कि इनकी मुखालफत कितनी की गई होगी, तो उन सारे औकात को नहीं कहा गया। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो मुश्किल वक्त है ना वो मौत का वक्त है, और उसके बाद वो जब इंसान उठेगा, जिन औकात को हम मुश्किल समझते हैं, क्या हमने मुश्किल समझा कि मौत कितनी मुश्किल वक्त है, उसके लिए मुझे तैयारी करनी है, जिस दिन उठना है वो बहुत मुश्किल वक्त होगा, उस दिन की मुझे तैयारी करनी है, मेरी सारी तैयारी ना इस दुनिया के लिए, सारी तैयारी यहीं के लिए और यहीं पे गुम हो जानी। इन औकात को हम मुश्किल समझते हैं कि हल्ला क्या होगा अगर जॉब चली गई है, क्या होगा अगर वो मुझसे रूठ गया, अगर क्या होगा अगर हुकूमत में कोई मेरे मुखालिफ होगा, क्या हो गया अगर मेरे दोस्त मुझे छोड़ जाए, और क्या हो गया अगर रिश्तेदार नाराज हो जाए, ये हमारे लिए मुश्किल है, क्या हो जाएगा अगर मैं बीमार हो जाऊं, ये सारी हमें मुश्किलें लगती हैं कि मेरी सेहत चली जाए, मेरे ऊपर बुढ़ापा आ जाए, हाय उनको देख देख के चीजों को हम डरते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम इस चीज की दिन के लिए फिक्र करें जिस दिन मुझे दुनिया से जाना है और जिस दिन मुझे वहां पे उठना है। इसमें अल्लाह मुझे सलामती मिल जाए, इसमें हम दुआएं मांगे कि अल्लाह उस दिन मुझे अपनी तरफ से अमन और सलामती अता फरमाना, तो कयामत के दिन भी उनके उनको बहुत बड़ा एजाज दिया जाएगा, बड़ा शर्फ होगा, बड़ी इज्जत होगी, बड़ी सलामती होगी उस दिन जो महफूज हो गया, उस दिन जिसको सिक्योरिटी मिल गई, और क्या चाहिए, उस दिन सेफ होंगे वो। हमें पता है कि हम सेफ होंगे, हमें पता है कि हमारे लिए सलामती होगी मरते वक्त या अगले, ये दो दो इन चीजों पे गौर कीजिए, यौम यमूत व यौम युबअथ हय्या, क्या हमें पता है? फिर हम क्या करें इस दिन के बारे में कि हमें भी सलामती मिल जाए। अब आगे जिक्र आता है हजरत मरियम का। कहा जाता है कि ये, जैसे कि आपको पता है, इनकी पैदाइश का भी अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में इनकी पैदाइश का जिक्र फरमाया है, और कैसे इनकी वालदा ने मन्नत मानी थी कि मैं अपनी बच्चे को जो भी पैदा होगा इसको मैं वक्फ कर दूंगी हैकल की जो खिदमत है उसके लिए। तो अगर पीछे जाके देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम के 12 जो आगे बाद में 12 कबीले थे ना, तो बनी इसराइल के जो थे उनमें सबने ड्यूटियां तकसीम कर ली थी हैकल की खिदमत के लिए। तो बनू लावी जो हारून अलैहिस्सलाम का कबीला था उसके जिम्मे था कि वो हैकल की सफाई सुथराई और इसके काम वगैरह इसकी खिदमत करें, बनू लावी के पास था ये खिदमत। तो इन्हीं के खानदान से जकरिया अलैहिस्सलाम थे, और जकरिया अलैहिस्सलाम की किफालत में हजरत मरियम थे। तो उन्होंने फिर हजरत मरियम को हैकल में ही एक जगह दे दी थी जहां पे ये इबादत करती थी, तालीम लेती थी, तालीम देती थी, ये हैकल की खिदमत करती थी वहां पे। तो ये हमें पता चलता है इनकी जिंदगी से कि यहाँ पे भी आप देखेंगे कि वो वहीं पे रहाइश पर पजीर थी। तो अब कहा जा रहा है वज़कुर फिल किताबी मरियम, और जिक्र करें किताब में मरियम अलैहिस्सलाम का, इज़िन तबअत, जब वो तन्हा होगी हो गई, मिन अहलीहा मकानन शर्कीया, जब वो अपने घर वालों से तन्हा एक जगह में मशरिक की जानिब, बैतुल मकदस के मशरिक की जानिब, इसीलिए आज ईसाई भी जो है ना वो मशरिक की जानिब भी मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उस वक्त तो जाहिर है वो ईसाइयों का तो कोई वजूद नहीं था, यहूदी थे, तो वो भी इस तरफ को फेस करते थे। तो वो वहाँ वो इस तरफ को फेस करके ये अपने घर भी उस तरफ ईस्टर्न तरफ ना, ईस्ट की जानेब इन्होंने बनाई होती है अपनी इबादत के लिए, अपना किबला बनाते हैं। तो उस वक्त हजरत मरियम तो उन्हीं के जमाने में थी, तो वो भी उस तरफ हैकले सुलेमानी में मशरिक की तरफ इबादत करती थी। तो उन्होंने अपने अहल से अलग हो गई, वो पता है जैसे कि ये वहीं पे रहती थी, लोगों से अलग थलग होकर इबादत करती थी। और हम देखते हैं कि जो इबादत में फोकस है ना, वो तभी हो पाता है जब इंसान लोगों से अलग होके इबादत करे। अगर आप लोगों के मजमे में नमाज पढ़ें तो आधे टाइम तो आपको लोगों की बातें ही सुनती रहेंगी, कोई क्या डिस्कशन कर रहा है, कोई क्या बात कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है, तो सारी नमाज के अंदर फोकस ध्यान आपका बजाय नमाज के इधर उधर ही रहेगा। तो इनको हम देखते हैं कि इनका फोकस अल्लाह ताला की तरफ, और उसके लिए उन्होंने अपने लिए चूज किया कि सबसे अलग होके मशरिक की जानिब वो अपनी इबादत के लिए अपने आप को उन्होंने मुख्तस कर लिया। और आप इनको भी देखेंगे कि इनकी वालदा ने, जाहिर है उनकी वालदा भी कैसी मुत्तकी परहेजगार होंगी जिसने अपनी बच्चे के लिए, आने वाले बच्चे के लिए, अभी दुनिया में आया नहीं है, कि उनके लिए ये नजर मान ली थी कि मैं यहाँ पे खिदमत के लिए दूंगी। तो इससे हम देख सकते हैं कि हजरत मरियम में भी फिर वही सिफात आगे आ रही है, और किफालत करने वाले भी जकरिया अलैहिस्सलाम, तो जाहिर है वो फिर उनके अंदर जाहिर है जो जिसकी जेरे किफालत होंगी उनकी भी तरबियत का एक इसमें पहलू है। तो सेक्लूड करके एक तरफ करके अलग जगह पर वो इबादत करने लगी, और जिसको हम एतकाफ कहते हैं अपने यहाँ। तो ये पिछले अंबिया की भी सुन्नत रही है, रोजमर्रा जिंदगी से अगर इंसान थोड़ा सा वक्त निकाल कर एक जगह बैठ जाए, खुद को अलग कर ले बाकी सब लोगों से और थोड़ा सी गौर फिक्र करे, अल्लाह की इबादत करे, तो इसमें सुकून भी बहुत है। और ये अभी जवान है जिस वक्त की ये इबादत कर रही हैं। बाज़ लोग सोचते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तो तभी हमको इबादत के लिए अपने आप को डेडिकेट करेंगे, जवानी में कौन सी इबादत, जवानी तो फन करने का नाम है। लेकिन हजरत मरियम की कहानी से हमें ये बहुत अच्छी तरह सबक मिलता है कि जवानी में जो इबादत है उससे ज्यादा खूबसूरत इबादत नहीं कोई हो सकती। यानी इंसान एक बचपने की भी इबादत हो सकती है, एक बुढ़ापे की भी हो सकती है, लेकिन जो जवानी की इबादत है शऊर के साथ है, ताकत के साथ है, हिम्मत के साथ है, उसका मुकाबला नहीं आप कर सकते। बचपन में इंसान को शऊर ही इतना नहीं होता, समझ नहीं होती, बस जैसे माँ बाप ने कह दिया वैसे कर ले। बुढ़ापे में हिम्मत नहीं होती, जितना इंसान भी कोशिश करे ना, जितने आपकी जिंदगी आगे बढ़ती जाएगी आप देखेंगे आपके अंदर कमजोरी आती है, आप ताकतवर नहीं होते जाते। नहीं ताकत तक 30s तक ताकत रह जाती है, उसके बाद तो मतलब इंसान कमजोरी की तरफ जाने लगता है। और हर साल आप अपने आपको देखेंगे कि कमजोरी की तरफ और बढ़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि आपकी हिम्मत और बढ़ेगी कि आप और नमाजें पढ़ लें, आप और तहज्जुदें पढ़ लें, आप और रोजे रख लें, ऐसा नहीं होता। लिहाजा जो वक्त मिले इंसान को उसके अंदर ही कोशिश करें कि आप उसी हिम्मत से जितनी भी आपके पास है कभी इंतजार ना करिए कि आगे वक्त आएगा तो उसमें करूंगी। जो आज है ना आपके पास वैसी हिम्मत कल नहीं होगी, इसलिए आज से फायदा उठाइए। तो वो देखें जवानी के अंदर जिस वक्त लोग फन करते हैं, जिस वक्त लोग एक ख्वाहिशात और एक हार्मोन्स उसके हाई होते हैं तो एक और तरफ ही ध्यान लगा होता है बाज लोगों का मजे करने में। आज आप उठा के देख लें जवानों में कितने काम होते हैं जो अल्लाह की तरफ आते हैं, और जवानी का हिसाब अल्लाह ताला ने अलग से लेना। तो जो भी 20s में हो 30s में हो वो सोचे इस बात को कि इस वक्त का हिसाब मुझे देना पड़ेगा, और अल्लाह ताला ने पूछना है कि इस हिम्मत को किधर लगाया, इस अक्ल को, इस समझ को। फतखजत मिन दूनिहिम हिजाबा, तो उसने कर लिए उनसे आड़, एक पर्दा कर लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना इतकाफ में भी हम एक अलग होके बैठ जाते हैं, एक पर्दा भी तान लेते हैं, किस लिए, फोकस के लिए, कि प्राइवेसी एक मिले उसके अंदर पूरी यकसुई के साथ। वो आप मस्जिद में भी जाते हैं आधा टाइम तो लोग एक दूसरे को ही देखते रहते हैं, फलां आगे आके नहीं आया, वो अच्छा वो आई भी, आप देखेंगे ध्यान, इवन यहां तक के अस्तगफिरुल्लाह लोगों को देखा नमाज में भी ना बजाय सज्दे की जगह पे अपनी नजरें होने के वो इधर उधर देख रहे होते हैं, मुंह उठाया होता है वो उधर से कोई जा रहा है, कौन सी ये नमाज हो रही है। तो इबादत फोकस चाहती है, डिस्ट्रैक्शन से दूरी होना चाहिए। लिहाजा इसलिए अपने इवन फोन्स को भी आप हटा दें, दूर कर दें, ये नहीं है सज्दे की जगह पे फोन रख लें ताकि अगर किसी का फोन या मैसेज आए तो चलो उस पर भी नजर। कौन सी हमारी इतनी मुश्किल पड़ जाती है कि हम एक सेकंड के लिए भी फोन को नहीं हटा सकते अपनी नजर से। आप देखते हैं अब क्लास हो रही होती है बीच में फोन बज रहे होते हैं, इतने फोन आते हैं, सोचती हूँ कि अगर अभी तो हम कह देते हैं लाइव क्लास में तुम कहते हैं अपने फोन बंद कर दे, ये जो ऑनलाइन क्लास में इतने इसमें कितने लोग हैं जो अपने फोन बंद करके एक साइड पे रख देते हैं कि मेरी नजर भी ना पड़े, और कितने लोग हैं जो अपने नोट्स के साथ फोन रखे हुए हैं कि साथ मैसेज भी पढ़ती जाओ। जितनी देर आपने मैसेज पढ़ा या आप फोन उठा रही हैं उतना सबक तो आपका चला गया ना। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ये 2-2.5 घंटे ही अल्लाह ताला के लिए अपने आप को बिल्कुल डेडिकेट कर दें कि ये टाइम अल्लाह तेरा है। कोई वक्त तो ऐसा हो जिसमें हम कट ऑफ हो जाएं दुनिया से और हम सब लोगों से कट ऑफ हो के सिर्फ अल्लाह की तरफ ध्यान लगा लें। कोई वक्त तो ऐसा हो दिन में, कोई एक वक्त भी नहीं, यकीन करें ऐसा वक्त, मिनट मिनट में कभी किसी का मैसेज, कभी किसी की कॉल, कभी कोई टेक्स्ट, कभी कोई टेक्स्ट, कभी कितने नोटिफिकेशंस हमने लगाए होते, कभी कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, फिर फेसबुक पे फलाने ये कह दिया, फलाने ने ये डाल दिया, फलाने ने, अब साइंस भी आज बताती है कि जो डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, अपने बच्चों को तो हम बहुत चाहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन ना हो, इनसे फोन ले लूं, बेटा पढ़ाई का, खुद आप पढ़ते वक्त क्या करते हैं? आप खुद बताइए, बच्चे को आप चाहते हैं कि वो पढ़ते वक्त साथ किताब के फोन रख ले? उसकी तो एक दुनिया की पढ़ाई है, लेकिन उसमें आप नहीं चाहते कि उसकी कोई डिस्ट्रैक्शन हो। मगर हाँ, कुरान ही इतना फालतू है कि इसके साथ डिस्ट्रैक्शंस भी होती रहे तो ठीक है, चलेगा, कोई मसला नहीं। अगर मैं भी अपना फोन देखना शुरू कर दूं तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी? और आप अगर जो पढ़ने वाले हैं वो अपना फोकस इधर उधर करके, इधर फोन भी सुन रहे हैं, इधर बातें भी हो रही हैं, वो साइंस कहती है कि आपको 15 मिनट्स लगते हैं दोबारा अपना फोकस करने के लिए। 15 मिनट्स यू नीड, 15 मिनट के लिए तो आप गए ना, आप वो जिसने जो आपके साथ बात की है, आपका दिमाग तो उसके ऊपर चला गया। अब आपको वापस अपने आप को लाने में टाइम लगता है। आप इम्तिहान में बैठे में साथ फोन रख ली, कभी करेगा कोई? हाँ, लेकिन हमारी ये सारी ही अकलमंदी हमारे बच्चों के लिए तो जरूर है, हम बच्चों के लिए ये बिल्कुल नहीं चाहते। हर माँ शिकायत करती है, देखो बच्चों को फोन ने बिगाड़ दिया, ये कर, लेकिन खुद हमारे क्या हालात हैं उसके ऊपर नहीं कभी देखते। हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं वो नहीं देखते। हम सब पढ़ाई के दौरान साथ फोन रख के बैठे होते, तो प्लीज आइंदा से अपने फोन बंद करके एक साइड पे रखते हैं कि आपकी नजर ना जाए वहां पे, बेल को ऑफ कर दीजिए, कुछ भी नहीं होगा, यकीन करें। 2.5 घंटे बाद भी दुनिया वहीं की वहीं होगी, कयामत नहीं आ जानी इतनी देर में, ना ही आपके करोड़ों के सौदे हैं जो आपसे रह जाएंगे, जो आपका नुकसान हो जाए। हाँ, मगर ये नुकसान है जो हो जाएगा, एक दफा बातें निकल गई तो फिर बस निकल गई, आगे पहुंच गए, उसके बाद आपको पता ही नहीं कहाँ से शुरू किया था, क्या बात हो रही थी, फिर सोचने की कोशिश करते, फिर एंड में सवाल कर देते, अच्छा इस ये बात नहीं समझ आई, समझ कैसे आएगी, वो तो बात बता भी गई, लेसन में बता दी गई, आप उस वक्त कहीं और पहुंचे गए थे। तो आज के वक्त में डिस्ट्रैक्शंस उससे कहीं ज्यादा हैं जो उस वक्त जमाने में होंगी। उस समय क्या जमाने में डिस्ट्रैक्शन ज्यादातर हो सकती हैं, वो भी हैकल में रहते हैं, क्या हो सकती हैं सोचें, क्या डिस्ट्रैक्शन होंगी उनको, ना कोई फोन ना कोई कुछ और चीज ऐसी थी। फिर भी खुद को अलग किया उन्होंने, हिजाब किया, ओट की, ताकि प्राइवेसी के साथ फोकस किया जाए। क्या अल्लाह ताला की जात नहीं है इस काबिल कि हम उसके लिए अपने आप को डेडिकेट करें, चंद घंटे के लिए, चंद मिनट के, हमारी नमाजें तक भी फोकस्ड नहीं, और तो और सोचें, और तो कोई बात सो छोड़ ही दे, हमने अपने आप को डेडिकेट कर दिया इतना ज्यादा दुनिया के लिए कि हम उससे निकल ही नहीं पाते। खाना बना रहे हैं तब किसी से बात कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं तब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पहुंचे में दुनिया में, सफाई कर रहे हैं तब हमारा दिमाग कहीं और है। ऑल द टाइम वी आर बिजी इन दिस वर्ल्ड। या किसी की बात याद कर रहे हैं, जो उसने ऐसे कह दिया था, अच्छा मैं आज ये पका लूंगी, अच्छा मैंने वहां जाना है, अच्छा ये हो जाए, सारा वक्त हमारा दिमाग चल रहा है इसी में, किस वक्त हम फोकस होंगे, कब हम लर्न करेंगे टू फोकस? तो जब वो ऐसे अलग हुई तो फिर फअरसलना इलैहा, तो भेजा हमने उनकी तरफ रूहाना, अपनी रूह को, रूह का जब लफ्ज आता है ना कुराने पाक में तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लिए आता है, उनको रूहुल अमीन कहा गया। वो कुरान लाने वाले थे, जो भी इंसानियत के लिए रूह है, उसकी रूह की जिंदगी है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये निस्बत रूहाना, हमारी रूह, अपनी रूह का मतलब ये नहीं अल्लाह माफ करे अल्लाह ताला की तरफ से कोई रूह, ये निस्बते तशरीफी है ओनर के लिए। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं बैतुल्ला, तो ये नहीं कि वो अल्लाह का घर है, जैसे बच्चे समझ रहे थे पता नहीं अल्लाह ताला का घर है यहाँ पे, नहीं, वो इज्जत इज्जत दी जाती है, नाखतुल्लाह अल्लाह की ऊंटनी, उसको इज्जत दी गई है, ठीक है। तो फतमसला बशरन सबिया, तो उसने अपने आप को तमसील कर ली, शक्ल अपना ली, जिसे आज हम बहुत अच्छी तरह इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि हम ये जो इसमें देखते हैं हर जगह बच्चों के भी उसके अंदर आ रहा होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, वो ट्रक है वो ट्रांसफॉर्म होके बड़ा सा आदमी बन गया, वो एक आदमी है वो हल्क बन गया, फिर कुछ कोई चीज बन जाता है वो कोई चीज बन जाता है, बड़ी सी कोई चीज बन जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन को आज हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि हम इस तरह की चीजें स्क्रीन पे देखते हैं, तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, एक बशर अंसबिया, एक बशर में, एक आदमी में, जो सबिया था वेरी हैंडसम, बहुत गुड लुकिंग आदमी में ट्रांसफॉर्म हो गया। दो वजूहात हैं क्यों वो ट्रांसफॉर्म हुए, जिब्राइल अलैह सलाम, ये जिब्राइल अलैह सलाम थे ना, क्योंकि रूहाना है, तो क्यों हुए ट्रांसफॉर्म? इसलिए, नंबर वन, इसलिए क्योंकि कोई इंसान एक फरिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर सकता उसको देखना। इब्राहिम अलैहि सलाम को आप सल्लम ने देखा था, तो आप सल्लम से भी बर्दाश्त नहीं हुआ था जब पहली दफा देखा था, बेहोश हो गए थे। 600 पार थे उनके, और दो तो ऐसे हैं कि दो पार भी खोलते हैं तो ऐसे हैं कि मशरिक से मगरिब तक भर जाए, तो पूरा उफक उनके परों से ढका हुआ था। और नंबर टू, ये हजरत मरियम का भी एक इम्तिहान था, सुबहान अल्लाह, कि एक जवान लड़की और उसके सामने हसीन लड़का आ जाए कोई, और वो भी तन्हाई में, बिल्कुल अकेले हैं, किसी को कोई पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। तो सुभान अल्लाह, जाहिर है अल्लाह ताला ने उनकी तो इतनी तारीफ फरमाई है कि वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली, सूरह तहरीम में अल्लाह ताला ने इनकी तारीफ फरमाई है ना, हजरत मरियम की, दो ही औरतों की वहां पे तारीफ फरमाई गई सूरह तहरीम के, आप एंड में देख लेंगे, एक बीबी आसिया की और एक हजरत मरियम की। सुभान अल्लाह, किस क्या ऑनर है उनका जिनकी तारीफ अल्लाह ताला फरमाए, और जिनको अल्लाह ताला फरमा दे कि इस कालतिल मलाइका तो या मरियम इन अल्लाह इस्तफा की व तहर की इस्तफा की अला निसाइल आलमीन, इतनी रश आता है आयत पढ़ के सूरह आले इमरान की है, 30 या 42 है शायद, तो वो कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ताला ने आपको चुना है सारे जहान की औरतों पर, सुभान अल्लाह। और आपसे सरम ने जिनकी, जिन औरतों की तारीफ फरमाई और जिनको सबसे ऊपर, औरतों में भी सबसे ऊपर जिनका मकाम है, उनके अंदर एक इनका जिक्र आता है, और बीबी आसिया का, हजरत खदीजा का। तो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, के अल्लाह ताला ने इनके पास जिब्राइल अलैह सलाम को भेज दिया इंसानी सूरत में। और आप देखें, इससे वो नबिया नहीं हो गई, क्योंकि कुरान कहता है कि नबी सिर्फ आदमी हुए हैं, कभी कोई औरत नबिया नहीं हुई, तो उनके आने से वो नबिया नहीं बन गई, ठीक है। तो कालत इन्नी आऊदु बिर्रहमान मिनका इन कुंत तकिया, फौरन कहती हैं, सुभान अल्लाह, फौरन कहती हैं कि ये नहीं कि मैं चीखे मारूं, मैं किसी लोगों को बुलाऊं, मैं शोर करूं, मैं, देखिए उनका कनेक्शन अल्लाह ताला से कैसा होगा, अल्लाह की यादों में बैठी हुई है फोकस करके, पर्दे के पीछे सबसे अलग होके, कि यहाँ पे कोई एक लड़का आ गया है, कोई हैंडसम सा लड़का आ गया, और वो कह रही है आऊज़ु बिर्रहमान मिनका, मैं अल्लाह की पनाह, अल्लाह की भी नहीं फरमाया, कहती मैं रहमान की पनाह मांगती हूँ, रहमान यानी अल्लाह ताला को उसकी सिफत रहमत से याद किया कि अल्लाह तेरी रहमत की मुझे जरूरत है, कि मैं उसकी पनाह में आती हूँ, रहमान की पनाह में आती हूँ तुझसे, अगर तेरे अंदर कोई भी खुदा खौफी है, ये दूसरे को एक याद कराने का तरीका है ना, कि अगर तेरे अंदर खुदा का खौफ है, जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि अगर खुदा का खौफ है तो ये काम ना करना, तो अगर तू कोई मुत्तकी है ना तो तुम कुछ गलत नहीं करोगे, मैं अल्लाह की पनाह में, रहमान की पनाह में आती हूँ। तो ये तो बात दूर की है कि कोई ऐसे लड़के से बात करती वो, और इससे उनकी पाक दामनी का पता चलता है। और आपको पता है जैसे कि इस किस्से से आपको पता चलेगा कि दोनों लोग का रद्द है यहाँ पे, एक तो उनका भी रद्द है जो कहते थे कि ईसा इब्नुल्लाह है, और उनका भी रद्द है जो कहते कि हजरत मरियम, अल्लाह ताला माफ करे कि उनके ऊपर बोहतान लगाते कि इन्होंने कोई मतलब है कि कोई ऐसा काम किया, हराम काम किया जिससे ईसा अलैहि सलाम पैदा हुए, जो यहूदी थे, तो यहूदियों का भी रद्द है और ईसाइयों के भी अकीदे का रद्द है इसमें। तो वो तो इतनी पाक दामन थी कि एक इंसान को देख के ऐसे वो आगे से क्या कहती, मैं रहमान की पनाह में आती, लड़कियों के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है कि कोई लड़का अप्रोच करता है उनको, कोई लड़का उनसे बात करना चाहता है, कोई उनकी तरफ आगे बढ़ता है, तो जो पाक दामन लड़की होती है उसके लिए कितनी बड़ी एक एग्जाम्पल है, सुभान अल्लाह। और किसी भी औरत के लिए, सिर्फ आज लड़कियों के मसाइल नहीं है, खवातीन के भी मसाइल हैं, जिन जाहिर है हर औरत के लिए, लड़की है तो उसको कोई लड़का अप्रोच करेगा जो बड़ी उम्र की है उसको, तो कहते हैं ना, किसी ने कहा कि भाई बड़ी उम्र की औरत को पर्दे की क्या जरूरत है, जो वैसे तो हम वैसे अपने आप को कहते हैं मैं पर्दे की जरूरत है क्योंकि अब तो मेरी एज इतनी हो गई है, लेकिन जिस वक्त वैसे अपने आप को यानी खूबसूरत बनाने का या कपड़े पहनने का, जेवर पहनने का, मेकअप करने का टाइम आता है तो फिर हम कहते हैं हमसे तो जवान ही कोई नहीं, मैं तो अभी जवान हूँ, मुझे किसी ने आंटी क्यों कह दिया या बाजी क्यों कह दिया। अगर पर्दा करने की बात आती है तो हम कहते हैं हाय हम तो इतने बूढ़े हो गए, अब हमें किसने देखना। उस वक्त हमारा ये अप्रोच है, लेकिन जब अपनी जेबो जीनत करनी है तो फिर हमारी अप्रोच क्या है कि मैं इतनी यंग हूं, अभी आपने मुझे ऐसा कहा भी क्यों। तो ये बात फिर उस वक्त नहीं याद आती जिस वक्त हमने पर्दा करने की बात आती है, उस वक्त हम बूढ़े बन जाते हैं। तो औरतों के क्या हालात है देखिए आप जरा, सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। तो वो किसी ने कहा कि भाई मैं तो इतनी यानी बड़ी उम्र की हो गई, अब मुझे पर्दे की क्या जरूरत है। तो उनको कहा गया कि जैसे एक 20 साल की लड़की को देखने के लिए एक 25 साल का लड़का मौजूद है, इसी तरह एक 60 साल की औरत को देखने के लिए भी कोई 70 साल का आदमी मौजूद है जो बूढ़ा है, जो उधेड़ उम्र है। तो इसलिए हर एज के अंदर औरत की अपनी इज्जत की हिफाजत जरूरी है। और कोई औरत ये भी ना सोचे कि अब तो मैं शादीशुदा हूं ना, अब मुझे किसने क्या। ऐसे ऐसे अल्लाह ताला माफ करे क्योंकि हम दौरे फितन से गुजर रहे हैं, ऐसे ऐसे मसाइल आते हैं कि शादीशुदा औरतों भी फितने में पड़ने का डर है और फिर पड़ती हैं। तो इसलिए अपनी इज्जत की हिफाजत हर एज में ही औरत के लिए जरूरी है, हर एज के अंदर ही। ऐसी कोई चांस ना, ऐसा कोई भी इम्कान जहां से हो सकता है उस दरवाजे को खुला ना रहने दे। वहां पे कोई आपको अप्रोच करता है तो उसको वेलकम ना करें, उसको एनकरेज ना करें कि वो आपसे दूसरी दफा बात करे, ठीक है। तो जब उनको एक लड़का नजर आया तो उन्होंने ये नहीं कहा अच्छा तुम क्या करने आए हो यहाँ पे, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम आ कैसे गए यहाँ पे। फौरन उन्होंने क्या कहा है, उस उनसे बात नहीं की, इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानी मिनका, मैं रहमान की पनाह चाहती हूँ तुझसे अगर तेरे अंदर कोई तकवा है तो। समझ आई बात। अभी तो उसने कहा भी नहीं कि मैं किस इरादे से आया हूं या मैं बुरे इरादे से आया हूं, कच्चे से आया हूं कि क्या करने आया। लेकिन ये एक मुत्तकी औरत का काम है जो कि हमें समझ नहीं आती, अकल नहीं आती, हम बड़े भी हो जाते हैं। और बच्चियों को क्या कहना, उनकी तो वो एक ऐसी उम्र है जिसमें समझ होती ही नहीं है। अच्छी भली औरतों को भी ये समझ नहीं आती कि उनको अगर कोई आदमी टेक्स्ट कर रहा है या कोई ऐसे ज्यादा फ्री होने की कोशिश कर रहा है तो हम अंदर से हमारे एक अलार्म बजे और हम कहेंगे नो स्टॉप, यहां से आगे नहीं जाना और ये सही नहीं लग रही बात। हम आगे बढ़ के कहते हैं कि हमने नहीं जी, जी, जी ये तो बैड मैनर्स लगती हैं और मुझे तो बात करनी है, और उसने सलाम किया तो मैं वालेकुम सलाम तो कहूंगी ना, वो हाल अहवाल पूछ रहा तो जवाब तो दूंगी और अब उनका भी हाल पूछ लूं भाई, तमीज तो यही है क्यों। तो इससे हमें बहुत लर्न करना चाहिए। और आगे आगे आप देखेंगे और खास तौर पे खवातीन के लिए सूरह मरियम में बहुत लेसन है कैसे हमें इस दौर में चलना है, क्योंकि फितने बहुत ज्यादा हैं, कैसे चलना है अपनी इज्जत की हिफाजत करते हुए वो समझना है हमें। कौला इन्नमा अना रसूल रब्बिक, कहा उसने मैं तो रसूल हूं तेरे रब की तरफ से, यानी मैं एक रसूल से मतलब क्या कि पैगाम लेकर आया हूं तेरे रब की तरफ से, यानी मैं कोई इंसान ऐसे नहीं हूं, मैं तो कोई कैरियर हूं। ले अहबल की गुलामन जकिया, कि मैं तुझे दूं एक लड़का पाकीजा, यानी अल्लाह ताला की तरफ से, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, क्योंकि पहले ही बता दिया कि मैं अल्लाह की तरफ से एक रसूल हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि बाज ने लिखा जी हम, इसका मतलब है कि जाके हम औलिया अल्लाह से भी मांग सकते हैं क्योंकि जब वो हमें देंगे तो वो भी तो अल्लाह की तरफ से दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई चीज यहां से आप नहीं ले सकते। बाज तफसीरों में जहां पे, इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हर तफसीर नहीं पढ़ने बैठ जाए, बाज में ऐसी गुमराही की बातें लिखी होती हैं कि इसका मतलब अब वो भी तो हमें अल्लाह की तरफ से ही दे रहे हैं, तो इसलिए वो भी हम उनसे भी कह सकते हैं कि आप हमें दे दें, क्योंकि देखें यहाँ पे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये कहा, ये गलत है। तो रब्बी की, तेरे रब की तरफ से, रब फिर जहन में ले आए वो, क्योंकि यहाँ पे औलाद की बात आ रही है ना, रब वो होता है जो केयर करने वाला होता है, जो सस्टेनर है, मेंटेनर है, जो जो इंसान को पालने वाला है, जो उसको हिफाजत करने वाला है, जो उसका मालिक है। तो मैसेज चूंकि बच्चे का देना है ना, इसलिए रब का लफ्ज आया। तो आपके रब की तरफ से मैं आया हूं, उसने मुझे भेजा है कि मैं आपको दूं, ठीक है, देखें जैसे कोई आपके पास चिट्ठी लेकर आए, वो कहे कि मैं फलाने की तरफ से आऊं, ये मैं आपको देता हूं कि मैं आपको ये पहुंचा दूं, यही कहेगा ना, ये बताने के लिए कि भाई उसकी तरफ से ही आया, ये नहीं कि मैं खुद अपनी तरफ से ये चिट्ठी रख के लिख के ले आया। तो ये बहुत फर्क है इसमें, ये नहीं कहना चाहिए कि वो जो हम औलिया अल्लाह की भी कब्रों पे जाके इसी तरह मांगने शुरू कर दें, क्योंकि वो तो नहीं दे रहे, वो तो अल्लाह से ही दिला रहे हैं, तो हम भी कह सकते हैं उनको। और फिर ली अहबा लकी, ठीक है, अहबा मैंने अभी आपको हिबा से बताया, तोहफा होता है। और ऐसा बच्चा, सिर्फ बच्चा नहीं, सिर्फ लड़का नहीं, जकिया, पाक, पाकीजा बच्चा, प्रॉब्लमेटिक नहीं। बस बच्चे प्रॉब्लम होते हैं पेरेंट्स के लिए, आपने सूरह कहफ में पढ़ लिया है कि उस बच्चे ने कैसा प्रॉब्लमेटिक बनना था पेरेंट्स के लिए, और किसी तरह के भी प्रॉब्लम हो सकते, वो बच्चे फिर इम्तिहान बन जाते हैं। नहीं, ये एक जकिया होगा, इसका बातिन भी पाक। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्लाह ताला की तरफ से, हालत अन्ना ये कूनुली गुलाम, अब उनको तसल्ली हो गई कि अच्छा ये अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ते हैं, तो अब बात कर रही हैं। ठीक है, आप देख लें कि पहले नहीं उन्होंने बात की, पहले नहीं अब अलैक्स अलैक और हाल अहवाल किया है, अब कन्वर्सेशन शुरू कर रही हैं कि कैसे होगा मेरे लिए बेटा। अब ये नहीं है कि वो भी बिलीव नहीं कर रहे, मगर जैसे मैंने आपको जकरिया अलैहिस्सलाम का बताया कि यानी किस तरह से हो सकता है, यानी इंसान कहता है ना कि कैसे, पता तो है कि हो सकता है, होगा, जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया तो होगा, फरिश्ता आके कह रहा तो होगा, लेकिन कैसे, इंसान को समझ नहीं आती ना, वो समझना चाहता है कि क्या तरीका कार हो सकता है। वलम यमससनी बशर, जबकि मुझे तो किसी बशर ने छुआ नहीं। और आप देखें कुराने पाक में ऐसी बातों को हमेशा इशारतन कहा जाता है, जब जब तयम्मुम वुजू की इन आयात के अंदर भी जब आया ना कि भाई जब तुमने अपनी बीवियों से ताल्लुक किया हो तो लामस्तुमुन्निसा, तुमने छुआ औरतों को, या जा अहदकुमुल गाइत मिनल गाइत के तुम बाथरूम से होके आए हो, तो इन इन तरह की बातों को जो शर्म वाली होती है उनको बहुत ओपनली नहीं कुरान ने कहा। इसी तरह यहाँ पे लम यमससनी बशर का मतलब क्या है कि मेरी शादी नहीं हुई, मुझे किसी, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे छुआ नहीं है, यानी मेरा मतलब है कि फिजिकल रिलेशनशिप नहीं किसी के साथ हुआ, और वो शादी के बाद ही होता है। और वलम अकु बगिया, और ना ही मैं कोई सरकश बदकार औरत हूं कि कोई जिनाकार भी नहीं हूं कि आउट ऑफ वेडलॉक शादी के अलावा कहीं और ताल्लुकात करूं। और यहाँ पे भी देखें अकुन की जगह अकु आया, और पीछे भी आयत 9 में वलम तकु शैया, ठीक है, तो तकुन नहीं वहां पे आया, और यहाँ पे अकुन होना था वो नहीं आया, वहां पे भी नून गिर गया और यहाँ पे भी नून गिर गया। और वजह इसकी क्या है कि वहां पे भी तकुन में नून होता तो वो वर्ड वर्ड बड़ा बन जाता ना, तो तकु आया, नून को गिराया, यानी तुम इतनी मामूली चीज हो कि लम तकु शैआ, बिल्कुल कुछ हो ही नहीं, जब तुम बिल्कुल कुछ थे ही नहीं। तो नून का गिरना भी बता रहा है कि कितनी हकीर चीज थे। और यहाँ पे बगिया है, अकुन भी नहीं, अकुन असल वर्ड अकुन था कि यानी मैं तो बिल्कुल भी नहीं, जरा बराबर भी नहीं, मैं बदकारी की तरफ जरा बराबर भी नहीं, इस चीज की तरफ मायल, इस चीज की में इन्वॉल्व, तो अकु आया। ठीक है, तो इस टू द माइन्यूट लेवल भी नहीं हो कि मैं कोई लिमिट्स क्रॉस करती, तो जब ऐसा है तो फिर कैसे होगा, यानी एक नेचुरल सा दिमाग के अंदर आती है ना बात, अलग के इसी तरह होगा कहा, इसी तरह होगा उस फरिश्ते ने कहा जिब्राइल अलैहि सलाम। और दूसरा इसका माना है कि हाँ जो आप कह रही हैं वैसा ही है, लेकिन काला रब्बु की हुआ अलैया हय्यिनुन, वही वाली बात जो पहले गुजर चुकी है, तेरे रब ने फरमाया कि ये उसके ऊपर बहुत आसान है। देखें जो पैदाइशें दुनिया के अंदर हुई हैं वो तीन तरह की हो चुकी थी, यानी माँ बाप के साथ भी हुई, बगैर बाप के भी हुई, अम्मा हवा सॉरी बगैर माँ बाप के भी हुई, बगैर माँ बाप के साथ तो सारे इंसानों की हुई है, बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम की हुई, और बगैर माँ के हवा अलैहिस्सलाम की, अब बगैर बाप के, ये भी अल्लाह ताला ने दिखाना था कि वो हर तरह से पैदा कर सकता है, उसको असबाब की जरूरत नहीं है, उसका जो कानून है अदल है ना, जो अल्लाह ताला का जो कानून वैसे दुनिया में चलता है वो असबाब के पर्दे में चलता है कि सबब होता है और फिर, लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला सबब का मोहताज है। मोहताज से तो, इत्तेयाद से तो वो हर तरह की मोहताजी से पाक है, तो उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है। वो बगैर माँ बाप के भी पैदा कर सकता है और बगैर बाप के भी पैदा कर सकता है, जो अभी तक नहीं हुआ था। इससे पहले जो तीन तरह की पैदाइश थी वो हो चुकी थी, ये नहीं हुई थी। तो अल्लाह ताला ने इस चीज को भी निशानी बनाना था, इसलिए फरमाया वली नजअलहु आयतल लिन्नास, ताकि ये निशानी बन जाए लोगों के लिए कि अल्लाह ताला की कुदरत है, उसको सबब की जरूरत नहीं। वह रहमतम मिन्ना, और हमारी तरफ से एक रहमत, अल्लाह ताला की तरफ से रहमत, कैसे कि वो लोग जो मोजा कोई देखना चाहते हो और बस उनको सिर्फ एक जरा सी पुश की जरूरत हो, कि नहीं है, वो उन कन्विंस हो चुके हैं लेकिन जरा सी पुश चाहिए, कोई मोजा देखना चाहते हैं, उनके लिए रहमत। और जो ईमान वाले हैं उनके लिए भी रहमत, कि उनको और स्ट्रेंथ मिलती है, वो और मजबूत हो जाते हैं, उनके मुखालफों के मुंह बंद हो जाते हैं, कि अल्लाह ताला तो वो है कि जो ये भी मोजा करके दिखा सकता है, ये भी दिखा सकता है। वकाना अमरम मकदिया, और ये काम तो हो के रहने वाला, ये सारी बात फरिश्ते की है कि हमने इस तरह से करना है, क्योंकि ताकि ये लोगों के लिए निशानी बन जाए, रहमत हमारी तरफ से हो जाए। और ये एक काम है जो हो के रहेगा। तो पहले से ईमान लाने वाले हैं ना, जो बगैर मोजा देखे ईमान ला चुके हैं, वो मजबूत हो जाते हैं मोजे और देख के। आपके सामने भी कोई ऐसा मोजा आ जाता है, कोई ऐसी चीज, खरकी आदत, सुपर नेचुरल कोई चीज हो जाती है। वैसे तो लोग इतनी बेकार चीजों को भी ना फेक वीडियोस बना बना के दिखाते रहते हैं ताकि लोग इम्प्रेस हो जाएं। देखो जी कैसे चांद निकल रहा है, कितना बड़ा जमीन के करीब आ गया। देखो जी कहीं क्लाउड्स के अंदर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। देखो जी आलू काटा है तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। अगर वैसे कोई सुपर नेचुरल कोई चीज सामने आती तो इंसान एकदम उसका ईमान और मजबूत हो जाता है ना। ये रहमत है आपके ऊपर अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला ऐसी कोई चीज दिखा दे। और ये अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया है, जो अब हो के रहना, ये डिसाइड हो चुका है अल्लाह ताला की तरफ से।